हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर आदित्य घर तो आ गया था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिस तरीके से झलक ने दादाजी से मुलाकात की थी और दादाजी भी हंसते हुए उससे बातें कर रहे थे, फिर उसने झलक के साथ जो बर्ताव किया था, क्या उसे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था? अपने गुस्से में उसे इस तरह किसी लड़की के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए था, उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। ये ख्याल आते ही उसे अजीब सी ग्लानी महसूस होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ झलक ने जो सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, क्या वो सही था? यही सोचकर उसके अंदर फिर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो जाता। उसकी रातों की नींद पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटा रहा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार वो उठकर बैठ गया। रात का गहरा अंधेरा था। अचानक उसने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने मेंशन से निकलने का फैसला किया और सीधा मल्होत्रा मेंशन की ओर चल पड़ा। एक बार फिर सिक्योरिटी को चकमा देते हुए वो झलक की बालकनी तक पहुंच गया। लेकिन आज झलक सोई हुई नहीं थी। वो आराम से एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही आदित्य बालकनी में उतरा, झलक को तुरंत एहसास हो गया कि कोई आ चुका है। उसने बिना उसकी ओर देखे ही आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, आप अंदर आ सकते हैं मिस्टर राणा। ये सुनते ही आदित्य की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो आगे बढ़ा और जाकर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। झलक ने आदित्य को भरपूर नज़रों से देखते हुए कहा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आपने काफ़ी वक्त लगा दिया आने में। अब तो आदित्य की हैरानी और भी बढ़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर झलक को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। वो अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखने लगा। झलक ने बड़े आराम से उसके सामने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर राणा। आपको क्या लगता है, आप इस तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर यहाँ इतनी आसानी से आ सकते हैं? जी नहीं, आप यहाँ आए हैं क्योंकि मैंने आपको आने दिया है। उसकी कहने का अंदाज शांत था, लेकिन शब्दों में साफ ताकत थी। वो आगे बोली, मिस्टर राणा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सीरियसली, और आई अप्रिशिएट इट। लेकिन जो हमारे घर वाले चाहते हैं वो कभी भी नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी में किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात मैं आपको पहले भी साफ कर चुकी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप शादी, प्यार, मोहब्बत जैसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देंगे। आदित्य चुप था, उसकी जबान जैसे सिल चुकी थी। वो सिर्फ आंखों के इशारे से उसे आगे बोलने का संकेत दे रहा था। झलक ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा, देखिए दादाजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपको नापसंद नहीं करती। मुझे अपनी फील्ड में कामयाब होने वाले लोग पसंद हैं। आपने बहुत कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो छोटी बात नहीं है। आज आप जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, और हर चुनौती से लड़कर ही यहाँ तक आए होंगे। कुछ पल रुककर वो फिर बोली, लेकिन जानते हैं हमारे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? क्योंकि पहली नज़र में ही आपने मुझे गलत समझ लिया और मैंने आपको। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का फालतू ड्रामा नहीं चाहती। प्यार, मोहब्बत, शादी, ये सब मेरी प्राथमिकता नहीं है। अगर ये चीज़ें मेरे काम में इंटरफेयर करें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया और शांत स्वर में आगे कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो गया तो देश में हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा, और सच कहूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट को आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना वो अधूरा है। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि हमें इन सब बातों को किनारे रखकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर आप चाहें तो हम अपने बीच की गलत फहमियाँ दूर करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं दोस्ती से। इतना कहकर झलक ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। आदित्य तो जैसे सन रह गया। जो लड़कियां एक मिनट में उसके करीब आने को तैयार हो जाती थीं, जो उसके इशारों पर बदल जाती थीं, वही झलक आज इतने सीधे, ठंडे और आत्मविश्वास भरे अंदाज में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। उसके शब्दों में विनम्रता थी, मगर कहीं ना कहीं एक अनकही चेतावनी थी, मानो वो साफ कर रही हो कि सीमा पार करने की इजाज़त नहीं होगी। आदित्य पूरी तरह कन्फ्यूजन में था। उसने धीरे से कॉफ़ी का कप उठाया, झलक के कप से हल्के से टकराया और कहा, ठीक है, ये कप हमारी दोस्ती की शुरुआत के नाम। ये कहते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो झलक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। अगर वो सिर्फ दोस्ती चाहती है तो ठीक है, वो दोस्ती ही सही। आखिर वो प्रोजेक्ट जिसे वे दोनों मिलकर पूरा करने वाले थे, उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था, और फिलहाल उसके लिए वही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। वो जितना मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी था, उतना ही राणा इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी था। इसीलिए आदित्य ने भी समझदारी से काम लेते हुए अपने काम को सबसे ज़्यादा अहमियत देने का फ़ैसला कर लिया था। फिलहाल आदित्य के दिल से भी एक छोटा सा बोझ उतर गया था, वरना उसे लग रहा था कि जिस वक्त उसके दादाजी की तबीयत खराब हुई थी और उसने झलक के साथ गलत व्यवहार किया था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उस समय उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। आदित्य की शक्ल में उसे सिद्धार्थ खुराना का चेहरा नजर आने लगा था और उसे गुस्से में उसने अपना सारा आक्रोश आदित्य पर उतार दिया था, जबकि सच तो ये था कि उसका इरादा उसके साथ बदतमीजी करने का बिल्कुल भी नहीं था। झलक उसके बाद उससे माफी भी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर इतना सारा ड्रामा हो गया कि वो सॉरी तक नहीं कह पाई। फिलहाल आदित्य ने भी कहा था, ठीक है मिस मल्होत्रा, मुझे आपका ये ऑफर वाकई पसंद आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम प्रोफेशनली एकदम परफेक्ट तरीके से साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आदित्य की बात सुनकर झलक ने हल्के से पलके झपकाई। कॉफी खत्म होने के बाद आदित्य खड़ा हो गया और बोला, मैं चलता हूँ। आई होप अगर रात में किसी ने मुझे इस वक्त आपके कमरे में देख लिया तो कोई हंगामा नहीं होगा। ये सुनकर झलक ने उसकी ओर देखकर शांत लेकिन तीखे अंदाज में कहा, आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख भी लिया तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, पर हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप सवालों से बच पाएंगे। उसके इस बेपरवाह अंदाज को सुनकर आदित्य फिर सोच में पड़ गया। मन ही मन वो बुदबुदाया, अगर मैं इस लड़की के साथ ज्यादा देर रहा तो पक्का पागल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए अभी। वो झलक को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। जिस तरह वो बात कर रही थी, जिस तरह वो बर्ताव कर रही थी, उसे लग रहा था भला कोई लड़की इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है जिसे अपनी इज्जत की भी परवाह ना हो। लेकिन आदित्य राणा ये नहीं जानता था कि जिस लड़की की हजारों लोगों के बीच कई बार बेइज्जती हो चुकी हो, वो अपनी इज्जत को लेकर डरना बहुत पहले छोड़ चुकी होती है। फिलहाल आदित्य ने मन ही मन ठान लिया कि वो झलक के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, पहले दोस्त बनकर उसे समझने की कोशिश करेगा आखिरकार ये लड़की है कौन। वहीं दूसरी ओर इस वक्त दादी रणविजय के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने आकांक्षा को फोन करके उनके लिए शुक्रिया भी कहा था और साथ ही नैना से माफी मांगते हुए ये भी कहा था कि शायद उस दिन वे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थीं, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाईं। मीडिया वाले कब कहां से वार कर दें कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए वे खुलकर बात नहीं कर पाए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही उनके बेटे की शादी हो जाएगी सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा।
ये सुनकर नैना ने भी राहत की सांस ली और कहा कि नीलामी की बिल्कुल चिंता न करें, अगर किसी भी मोमेंट पर उन्हें लगे कि वे वो नेकलेस हासिल नहीं कर पाएंगे तो वो खुद अपना पैसा लगाने को तैयार हैं और पूरी तरह साथ देंगी। ये सुनकर उर्वशी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुराना इंडस्ट्रीज़ के पास इतना पैसा है कि हम आराम से वो नेकलेस हासिल कर लेंगे। फ़ोन रखने के बाद दादी ने रणविजय की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, भले ही सिद्धार्थ ने एक बार फिर हमारी बात मान ली हो और झलक के बारे में सोचना छोड़ दिया हो और उसके बारे में किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन ना करने का फ़ैसला किया हो, लेकिन जिस शक्ति के साथ वो लड़की यहाँ आई थी वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। खुराना प्रॉपर्टी में बिना हमारी परमिशन के तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और वो सीधी लग्जरी जेट लेकर अंदर आ गई। उसके पीछे जो बॉडीगार्ड्स थे, तुमने देखा था, वे बिल्कुल भी नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं लग रहे थे। रणविजय चुपचाप सुन रहा था। दादी आगे बोली, हमें सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि उसे किसने हमारे खिलाफ प्लान करके भेजा होगा या किसी पॉलिटिकल लीडर ने ड्रामा किया होगा, लेकिन जिस एटीट्यूड और दबंग अंदाज से उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर बात की वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। उसकी आंखों में मैंने एक अलग ही तरह की आग देखी थी, वो आग जो खुराना परिवार को एक पल में तबाह कर सकती है। उनकी आवाज़ अब और सख्त हो गई थी। रणविजय, उस लड़की को खोज कर निकालो, वो अब खुराना परिवार के लिए खतरा बन चुकी है, बहुत बड़ा खतरा। रणविजय ने तुरंत दादी को शांत करने की कोशिश की और बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं उसका कोई ठोस बैकग्राउंड भी नहीं है, बिना सबूत के हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं।